हाँ, बाल को जब तक फीडबैक देते रहोगे तब तक मैं ऑडियो भेजूंगा। जिस दिन बंद उस दिन मेरा ऑडियो भी बंद। ऐसे कल और परसों तो बंद रहेगा ही, शनिवार रविवार को। कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। पीछे आपने पढ़ा है कि समास के कितने भेद हैं, उसके क्या लक्षण हैं, वास्तविक में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब प्रपंच कल तक हो चुका था। आज एक नई बात शुरू हो रही है। आपने सुना होगा समर्था पद विधि सूत्र में कि सामर्थ्य दो प्रकार का होता है, एक एकार्थी भाव होता है, एक व्यपेक्षा होती है। तो एकार्थी भाव सामर्थ्य जो है ये व्याकरणों का सिद्धांत पक्ष है, मतलब हम लोग जो है एकार्थी भाववादी हैं, और न्याय मीमांसा वाले सब जो हैं वो सब व्यपेक्षावादी हैं। तो हम एकार्थी भाव के समर्थक हैं, वो सब व्यपेक्षा के समर्थक हैं। या जो एकार्थी भाव सामर्थ्य है ना, इसको जहत स्वार्था पक्ष भी बोला जाता है, और व्यपेक्षा सामर्थ्य जो है उसको अजहत स्वार्था पक्ष भी बोला जाता है। इस स्थिति को पहले समझ में कि ये है क्या। जैसे राज्ञा पुरुषा या विग्रह है, और राज पुरुषा या समास है। तो राज पुरुषा या राज पुरुषा, ये पूरा जो एक समूह है, ग्रुप है, इसी का अर्थ होता है, इसके टुकड़ों का अर्थ नहीं होता। इसका इसके जैसे दो टुकड़े होंगे राज और पुरुष, तो टुकड़े का अर्थ नहीं होता। राज पुरुषा, ये जो पूरा ग्रुप है, समूह है, इसी का अर्थ होता है। ये है एकार्थी भाव, माने एक ही पूरा शब्द है और एक ही उसका अर्थ है। व्यपेक्षा में क्या होता है कि समास होने के बावजूद भी उसके जो टुकड़े होते हैं ना, उसका ही उसके ही अर्थ होते हैं, समूह के अर्थ नहीं होते। जैसे राजपुरुष है तो राज का राजा अर्थ होगा, पुरुष का पुरुष अर्थ होगा। राजपुरुष का उसमें कोई रोल नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता, इसको कहते हैं व्यपेक्षा। अब ये हमारा सिद्धांत पक्ष है एकार्थी भाव, और पूर्व पक्ष के रूप में जो है व्यपेक्षा सामर्थ्य की बात होती है। इसी के संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि विश्वास गया था वहाँ प्रतियोगिता में कहीं पर, तो यही वाली कारिका जो है ना, उसको विषय के रूप में दिया गया था भाषण के लिए। आज वही प्रसंग है। चलो अच्छी बात है, उस समय में नहीं सीखे थे, आज सीख जाएंगे। 230 पेज निकालते हैं, 230 पेज में से आज हम शुरू करेंगे। इसमें लिखा है कि समर्था पद विधि इति सूत्रे भाष्यकारे अनेकधा। समर्था पद विधि का जब भाष्य हो रहा था ना, तो पतंजलि ने बहुत सारे पक्ष विपक्ष सब वहाँ पर उठाए हैं। भाष्य ही है, वो भाष्य नहीं महाभाष्य है, तो बहुत सारी बातें होंगी इसमें। आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जो एकार्थी भाव और व्यपेक्षा है ना, इसके दो और नाम है। एक है जहत स्वार्थ, जहत स्वार्थ, और एक है अजहत स्वार्थ। तो क्रम से देखिए, यहाँ पंक्ति में दूसरी पंक्ति जो है 230 पेज में, कि जहत स्वार्थ और जहत स्वार्थ पक्षयो हो, माने जहत स्वार्थ पक्ष और अजहत स्वार्थ पक्ष। इसी क्रम से आगे लिखा है एकार्थी भाव व्यपेक्षा। तो देखो, पहला का पहला है, दूसरा का दूसरा है। जहत स्वार्थ पक्ष हो गया एकार्थी भाव, और जहत स्वार्थ पक्ष हो गया व्यपेक्षा। तो हम जहत स्वार्था कहेंगे तो एकार्थी भाव समझना है आपको, और अजहत स्वार्थ कहेंगे तो व्यपेक्षा समझना है, क्योंकि ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। जहत स्वार्थ पक्ष बोलिए या एकार्थी भाव बोलिए, एक चीज है, और व्यपेक्षा बोलिए या अजहत स्वार्थ पक्ष बोलिए, बात एक ही है। अब इसके संबंध में व्याख्या में एक कारिका यहाँ पर देते हैं कि जहत स्वार्थ अजहत स्वार्थे द्वे वृत्ति ते पुनस्त्रधार। की वृत्ति जो है दो प्रकार की होती है, एक जहत स्वार्था वृत्ति, एक अजहत स्वार्था वृत्ति। अत्ये पुनः त्रिधा, और वो जो दो वृत्तियां हैं ना, वो फिर तीन टाइप की होती है, तीन प्रकार की हो जाती है। तो ये दो अगर तीन प्रकार की हो गई, तो तीन दूना छह प्रकार की वृत्तियां होती हैं, ये इस कारिका में बताया गया है। तो दो ये, अच्छा ये जो इन्होंने बताया ना कि ये दोनों तीन प्रकार की हो जाती, वो तीन प्रकार कौन है, तो आगे लिखते हैं भेद संसर्ग उभयम्। तो जहत स्वार्थ भेद, जहत स्वार्थ संसर्ग, जहत स्वार्थ उभय, ये तीन हो गए। ऐसे ही अजहत स्वार्थ भेद, अजहत स्वार्थ संसर्ग, अजहत स्वार्थ उभय, ये भी तीन। तो तीन तीन छह हो गए ना, ये छह प्रकार की वृत्तियां होती हैं, ऐसा महाभाष्य में बताया गया। अब थोड़ा देखो कि ये जहत स्वार्थ अजहत स्वार्थ है क्या, ये स्वयं बताते हैं। जहति पदानि स्व अर्थम यस्याम, ये जो विग्रह करते हैं जैसे राजपुरुष का विग्रह है राज्ञः पुरुषः, तो राज्ञः अपने अर्थ को जहति छोड़ दे, पुरुषः अपने अर्थ को छोड़ दे, तो फिर राज्ञः ने छोड़ दिया अपना अर्थ, पुरुषः ने अपना अर्थ छोड़ दिया, फिर अर्थ रहा किसका, तो राजपुरुषः का अर्थ रहा। तो जैसे राम पद है तो राम का तो अर्थ होता है, लेकिन राम में र का कोई अर्थ है, आ का कोई अर्थ है, म का कोई अर्थ है, तो जैसे पद में वर्ण निरर्थक होता है, ऐसे ही समास में समास के जो छोटे छोटे शब्द हैं ना, वो भी निरर्थक होते हैं, समास का ही अर्थ होता है, यही ये कहना चाहते हैं। अब पंक्ति देख लो, जहती माने त्यजंती, तो छोड़ देता है पद अपने अर्थ को जिसमें वह है झपस्वार्थ, पदे वर्णवत, जैसे पद में वर्ण निरर्थक होता है उसी तरह से वृत्ति में पद अनर्थक होता है। अयम भाव समास शक्तिया एव, आप देखो समास में जो शक्ति रहती है, पावर होता है, जिस पावर से समास अपने अर्थ को बताता है उसको समास शक्ति कहते हैं। तो वह समास शक्ति कौन सी है, एकार्थी भाव शक्ति है, तो एकार्थी भाव शक्ति के द्वारा ये अर्थ निकलता है राजपुरुष से, क्या राज विशिष्ट पुरुष कहते हैं राजपुरुष, और एकार्थी भाव शक्ति जो है समास शक्ति उससे अर्थ निकलता है राज विशिष्ट पुरुष। तो समास शक्ति से ही माने एकार्थी भाव शक्ति से ही ये अर्थ निकल जाएगा, तो उनके टुकड़ों का अर्थ क्यों माना जाए, यही कहते हैं समास शक्तिया एव राज विशिष्ट पुरुष भान बोध संभवे न राज पुरुष पदयो अपि तद बोधकत्वम, जब राज पुरुष से ही ये अर्थ निकला राज विशिष्ट पुरुष, तो राज पद का और पुरुष पद का अलग से अर्थ मानने की जरूरत नहीं है। कैसे, तो जैसे वृषभ और यावक, वृषभ माने बैल होता है और यावक माने मेहंदी होती है, तो यहाँ पूरे वृषभ का अर्थ होता है बैल, पूरे यावक का अर्थ होता है बैल, इसमें वृषभ का जो वृष है उसका अर्थ नहीं होता, यावक का याव जो है ना उसका अर्थ नहीं होता, ऐसे ही राजपुरुष का ही अर्थ होता है, राजपुरुष का राज और पुरुष का कोई अर्थ नहीं होता, ये है जहत स्वार्थ पक्ष। अन्यथा अब इसमें कहते हैं अगर ये जहत स्वार्था पक्ष नहीं मानेंगे, ये जहत स्वार्था पक्ष और एकार्थी भाव एक ही चीज, अगर ये नहीं मानेंगे तो एक दोष दे रहे हैं। अन्यथा राजपदे न विग्रह वाक्य युवा, अब देखो बेटा राजपुरुष का विग्रह क्या है, राज्ञः पुरुषः, तो इसमें राज्ञः का अगर हम विशेष, राजा कोई ऐसा है जो बड़ा समृद्ध है तो उसको हम समृद्ध कहेंगे या ऋद्ध कहेंगे, तो एक वाक्य बन सकता है कि ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः माने समृद्ध राजा का सिपाही, पुरुषा माने सिपाही। यहाँ पर आपने देखा ना राज्ञः का विशेषण बन गया ऋद्धस्य, तो विग्रह वाक्य में ये विशेषण तो लग जाता है ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः, लेकिन राजपुरुषः में ऋद्धस्य विशेषण नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि तो राजपदस्य में अकेला राजपद का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, और विशेषण किसके साथ लगता है जिसका कि स्वतंत्र अर्थ हो, तो विग्रह में तो विग्रह बाकी जो है राज्ञः पुरुषः, इसमें तो राज्ञः का स्वतंत्र अर्थ है पुरुषः का स्वतंत्र अर्थ है, तो राज्ञः के साथ विशेषण ऋद्धस्य लग जाता है, लेकिन राजपुरुषः में स्वतंत्र तो राजपद की सत्ता है नहीं, इसलिए उसमें ऋद्धस्य विशेषण नहीं लगता। वही ये बता रहे हैं कि यदि आप ये चीज नहीं मानेंगे, एकार्थी भाव को नहीं मानेंगे, अन्यथा राजपदे न विग्रह वाक्य है, राजपद में जैसे विग्रह वाक्य में विशेषण लग जाता है ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः, उसी तरह से आगे देखो देखा है ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इत्यत्र एव ऋद्धस्य राजपुरुषः इत्यस्यापि आपत्ति है, ये आपत्ति होने लगेगी, मतलब ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः तो सही है साधु है इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समास जो है राजपुरुषः उसमें ऋद्धस्य लगाना जो है गलत माना जाता है, वो भी अब सही होने लगेगा अगर आप व्यपेक्षावाद को मानेंगे, ये दोष इन्होंने दिया। अब दूसरा जो व्यपेक्षावाद है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं, उसको क्या कहा था, अजहत स्वार्थ पक्ष, वही बता अजहद थी न जहति पदानी स्वार्थम यस्याम सा अजहत स्वार्थ, ये जो अजहत स्वार्थ पक्ष है या व्यपेक्षा पक्ष है इसमें क्या होता है न जहति पदानी स्वार्थ, इसमें पद जो है ना अपने अर्थ का परित्याग नहीं करता, अयम अभिप्राय अपना अभिप्राय बताते हैं कि राजपुरुषादि समासादो न अतिरिक्ता शक्ति, हम लोग व्याकरण क्या करते हैं समास में अतिरिक्त शक्ति मानते हैं, एक्स्ट्रा पावर मानते हैं बाकी के अपेक्षा, लेकिन ये जो है ना राजपुरुष में समास में एक्स्ट्रा शक्ति नहीं मानते, माने एकार्थी भाव शक्ति नहीं मानते, ताकि कल्प का अभाव, कल्पक का अभाव है, माने कोई इसमें जबरदस्त प्रमाण नहीं है कि इसको मान लिया जाए। और दूसरी बात यह है कि क्लिप्त राजादि पदार्थ एवं अर्थोपस्थित संभवे तत्पल कल्पनस्य गौरव पराह तत्वाच का कि राजपुरुष में जब राजपद है ही पुरुष पद है ही वो अपना अर्थ बता देगा उसी से काम चल जाएगा तो अलग से एक ग्रुप का राजपुरुष इस पूरे समूह का अर्थ मानने की क्या जरूरत है ये बेकार बात है। तो इसीलिए उनके पद के ही अर्थ होते हैं पद के समूह के समास के अर्थ नहीं होते हैं और आकांक्षा दिवसात क्लिप्त शक्तिया एवं विशिष्ट अर्थ बोध और विशिष्ट अर्थ का बोध जो है क्लिप्त शक्ति से हो जाएगा माने व्यपेक्षा शक्ति से ही हो जाएगा एकार्थी भाव शक्ति मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज समझो खिचड़ी बनाते हो ना चावल दाल सब्जी डाल देते हो अब इसमें दो चीजें कोई कहेगा कि खिचड़ी का अपना टेस्ट है चावल का टेस्ट नहीं है दाल का टेस्ट नहीं है सब्जी का टेस्ट नहीं है ये जो है ना एकार्थी भाव हो गया माने समास का अर्थ होता है समास में जो होते हैं उसका पद का अर्थ नहीं होता। दूसरा वाला कहेगा कि अरे खिचड़ी का कोई टेस्ट होता ही नहीं है जो टेस्ट है उसमें चावल का टेस्ट है दाल का टेस्ट है सब्जी का टेस्ट है खिचड़ी का अपना टेस्ट नहीं है ये है व्यपेक्षा बात मतलब समास में जो पद रहते हैं उसी पद का पद हर एक पद का अपना अर्थ होता है उसका जो मिला हुआ स्वरूप है उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो खिचड़ी के उदाहरण से इस चीज को आप लोग समझ सकते हो। अब इन याद करो कि एक जो दोष दिया था ये एकार्थी भाव वालों ने कि व्यपेक्षा मानेंगे तो जैसे ऋद्धस्य राज्ञ पुरुष प्रयोग होता है राज्ञ में ऋद्धस्य विशेषण लग जाता है ऐसे राजपुरुष समास में भी ऋद्धस्य विशेषण लगने लगेगा ये जो दोष दिया था उसका समाधान यहाँ पर ये बताते हैं न च अत्रमते 232 पेज में लास्ट पैरा न च अत्रमते समासे ऋद्धस्य इसी विशेषण अन्वय आपत्ति ये जो आपत्ति दे रहे थे ये आपत्ति नहीं होगी क्योंकि एक वार्तिक है स्व विशेषणानाम वृत्तिर्ना और दूसरा वार्तिक है वृत्तस्य वा विशेषण योग होना ये दोनों वार्तिक कहते हैं कि जब वृत्ति कोई हो ना वृत्ति जैसे मान लो यहाँ समास वृत्ति है तो जब समास वृत्ति हो तो उसमें विशेषण का प्रयोग नहीं होता है। तो इस वार्तिक के कारण वह जो आपने दोष दिया था ना कि विशेषण लगने लगेगा ऋद्धस्य राजपुरुष वह विशेषण नहीं लगेगा ये वार्तिक निषेध कर देगा इस तरह से वह जो दोष दे रहा था वह दोष नहीं है ऐसा व्यपेक्षावादियों का कहना है। तो इस तरह से व्यपेक्षा और एकार्थी भाव को आपने सुना और इसके पर्यायवाची शब्द को सुना इसके तर्क वितर्क को सुना अब इसके जो तीन भेद हैं ना बड़े ही संक्षेप में दो तीन मिनट में खत्म करना चाहूंगा 233 पेज में है प्रसंगाद वृत्ति भेदम अपि निरूपयत ते पुनः इति द्वे अपि वृत्ति त्रिविधे द्वे अपि वृत्ति मतलब झत स्वार्थ वृत्ति और अझत स्वार्थ वृत्ति तीन तीन प्रकार का होता है वाच्य त्रैविध्यात वाच माने अर्थ तीन तरह के अर्थ होते हैं इसलिए ये लोग त्रिविध हो जाते हैं। अब इसमें तीन बताए थे ना भेद संसर्ग और उभय तो भेद का अर्थ बताया भेद अन्योन्याभाव अन्य में अन्य का अभाव होना इसका उदाहरण दिया जैसे राज पुरुष है ना तो इसका अर्थ क्या होगा भेद पक्ष में अराज राजपुरुष इत्यादि अराजकीय भिन्न इति बोधा भेद अर्थ मानेंगे ना तो राजपुरुषा का अर्थ होगा अराजकीय भिन्न और जब संसर्ग अर्थ मानेंगे तो दूसरे पैरा में चलो राज संबंधवान इत्येव सार्दम भानम तो संसर्ग अर्थ मानेंगे तो राज संबंधवान ऐसा अर्थ होगा। अब तीसरा पक्ष क्या था उभयम उभयम मानो दोनों अर्थ होता है भेद भी होता है और संसर्ग भी होता है ऐसा अगर अर्थ मानेंगे तो लास्ट लाइन में देखो तथा च अराजकीय भिन्न राज संबंधवांश च अयम इति बोधः तीसरा जब पक्ष मानेंगे तो राजपुरुष का ये वाला अर्थ होगा अराजकीय भिन्न राज संबंधवांश च अयम ये पूरा का पूरा राजपुरुष का अर्थ होगा। तो अगर भेद अर्थ माना तो अर्थ क्या हुआ राजपुरुष का अराजकीय भिन्न यदि संसर्ग अर्थ माना तो राजपुरुष का क्या अर्थ हुआ राज संबंधवान और उभयम मान लिया तो अर्थ क्या हुआ राजपुरुष का अराजकीय भिन्न राज संबंध वांश च अयम ऐसा बोध हुआ। और इन तीनों को भेद संसर्ग उभय को अगर हम जगह स्वार्थ पक्ष और अधक स्वार्थ पक्ष में मिला लेते हैं तो ये जो है ना छह प्रकार के हो जाते हैं। इस तरह से भाष्य में ये भी एक प्रसंग आया है कि वृत्तियां छह प्रकार की होती हैं उसी को आज जो है आज के पाठ में हमने बताया आप लोगों ने सुना और इसको सुनेंगे पढ़ेंगे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।